हम लोग अपने आप को बहुत महान मानते हैं तो कैसे भगवान को जो रक्षा को स्वीकार करेंगे या भगवान को मानेंगे, तो इसलिए अपने आप को बहुत ही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे पांडवों में ऐसे अनुभव नहीं हुआ, वो शंख और अलग वाद्यों के अन्य वाद्यों के सुनकर, लेकिन खरों में हुआ। क्यों? क्योंकि पांडवों में भगवान के रक्षा में उनको विश्वास था। तो बाद में जाकर भी भगवान बोलते हैं ना कि कौंतेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यते, हे अर्जुन मैं आप ये घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी भी उनका पतन नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। तो महाभारत में रूप गोस्वामी भक्त के समर सिंधु में वर्णन करते हैं कि भक्त लोगों के पास विश्वास रहता है कि भगवान रक्षा करेंगे, तो उसके लिए वो उदाहरण महाभारत से उल्लेख करते हैं। तो द्रौपदी ने ऐसे भगवान से कहा, सो प्रतिज्ञा तव गोविंद नमे भक्त प्रणश्यति इति संस्कृत्य प्राणान संधारे अम्यहम्। सो ऐसे कहते आपने प्रतिज्ञा किया है कि मेरे आपके भक्त कभी उनका विनाश नहीं होगा, नमे भक्त प्रणश्यति या उनका पतन नहीं होगा, तो वो फॉल डाउन नहीं होंगे। तो ऐसे आपने प्रतिज्ञा किया है, इसको स्मरण करके 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 मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जीवन रख रही है। ऐसे इति संस्मृत ये विश्वास के लिए उदाहरण है कि कैसे द्रौपदी को भी विश्वास था या अन्य पांडवों को भी भगवान के ऊपर बहुत ही विश्वास था, उसके कारण वो लोग डरते नहीं थे। हालांकि प्रभुपाद वहाँ पर भक्तिरसामृत सिंधु के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि तो भीष्मदेव जब वो बाण के शैया के ऊपर लेटे थे, पांडवों को देखकर उनको बहुत ही दुखी हो गए, अश्रु बहने लगे। तो भीष्मदेव आजीवन ब्रह्मचारी है और बहुत बड़ा योद्धा है, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, वो भी रोने लगे। तो इसका अर्थ क्या है, जनरली ब्रह्मचारी रहना मतलब ऐसा सेंटिमेंटल भावुक नहीं होना चाहिए, कोई माता आके आपको मेरा सब उनकी समस्या को प्रकट करेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे, आप भी रोने लगेंगे उनके साथ, तो आप ब्रह्मचारी नहीं रख पाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं आजीवन ब्रह्मचारी। तो बृहद व्रत भीषण उन्होंने व्रत लिया था ना, इसलिए उनको भीष्म कहते हैं। तो ऐसे वो व्रत लिया था उन्होंने और कितने सारे युद्ध लड़े थे, कितने सारे लोगों को मारा था उन्होंने, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पांडवों को देख कर वो अश्रु बहा रहे हैं। क्यों? इतने सारे कष्टों को उनको झेलने पड़े पांडवों को, फिर भी वो कभी भी अपने भक्ति से उन्होंने विमुख नहीं हुआ, कभी भी ऐसे सोचा नहीं क्यों हमें भगवान इतने कष्ट में डाल रहे। और उनको बहुत ही विश्वास था कि भगवान हमेशा हमें हमारे रक्षा करेंगे, और ऐसे ही हुआ, हमेशा उनको रक्षा की। तो इसको रक्षिष्यति विश्वास कहते हैं। तो उसके कारण सभी उनके हृदय में भय चला जाता। तो भय का अर्थ होता है वो भी माया है, भयभीत होना भी माया है। तो माया का परिभाषा क्या है, ऐसा सोचते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई शक्ति है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, उसको ही माया कहते हैं। नहीं तो या उसके कारण भय आ जाता है, वही माया का परिभाषा भी वही है। तो सब कुछ भगवान कृष्ण का है, भगवान कृष्ण और कृष्ण के शक्ति को छोड़कर और कुछ है इस जगत में या पर इसके परे के जगत में कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हम लोग ये माया के प्रभाव में होने के कारण ऐसा महसूस करते हैं कुछ और शक्ति है, तो है ना। तो इसलिए भय नहीं होता। श्रील प्रभुपाद भी जब वो 1940 के सदी में जब युद्ध हो रहा था कलकत्ता में, ब्लैकआउट हो गया, उनके मित्र ने भी कहा चलो चलो यहाँ से चलो, नहीं तो जापान के सैनिक सैनिक लोग बॉम्ब डालेंगे। तो प्रभुपाद जी उस समय पर कचौरी खा रहे थे, तो प्रभुपाद बोलते कि भगवान मुझे मारना चाहेंगे तो वैसे ही मैं मर जाऊँगा, तो वो रक्षा करेंगे तो ये बॉम्ब भी क्या करेगा मुझे। तो भगवान कृष्ण को भी उनके ऊपर उनको विश्वास था। ये भक्तों का या शरणागत भक्तों का लक्षण है। तो 20वां श्लोक लेंगे। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संघाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदं महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वज वाले रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो अभी हम लोग देखते हैं वो दो विभाग हो गए हम लोगों का, है ना, 19वां श्लोक तक। तो पहला था सैनिक का जो मापदंड करना, दोनों सेनाओं में शक्ति और शक्ति का मापदंड करना, वो सामान्यतः सभी क्षत्रिय करते थे उसको। तो और दूसरा चीज है तो युद्ध का आरंभ, तो शंख और अन्य वाद्यों का, अन्य जो वाद्य है उनको बजाने से युद्ध का आरंभ होता है। तो इसलिए इस श्लोक में आप देखिए, तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्वुद्यम्य पांडवा, ऐसे कहते हैं। सो शस्त्र संपाते, सब कुछ तैयार थे वो अभी छोड़ने के लिए बस। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब दोनों सेना को ऐसे युद्ध के इच्छा से वो व्यवस्थित देखकर, अलग अलग व्यूहों में ये लोग भी कुछ व्यूह करके खड़े हैं, वो लोग भी जनरली महाभारत में वैसे वर्णन आता है कि वो कौरव सेना पूरी तरह से, हालांकि बहुत बड़ा सेना था लेकिन कंप्लीटली वो पूरा अव्यवस्थित था, वो व्यवस्थित नहीं था। फिर भी कुछ व्यवस्था रहता है व्यवस्थित। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, दोनों ओर अभी युद्ध करने के लिए व्यवस्थित हो गए थे वो, इनको देखकर कपिध्वज, अर्जुन को यहाँ पर कपिध्वज करके संबोधित किया गया। तो कपिध्वज क्यों कपिध्वज, क्योंकि हनुमान उनके ध्वज के ऊपर हनुमान के चित्र थे, या वास्तव में हनुमान वहां पर उपस्थित थे। तो इसके भी महाभारत में वर्णन आता है। तो एक बार भीम जब पांडव बद्रिकाश्रम में थे तो वो लोग घूम रहे थे, अर्जुन तपस्या कर रहे थे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं से, और उस समय वो अलकनंदा नदी में एक 1000 दलों वाले कमल का पुष्प आ गया। उसको देखकर जो द्रौपदी है बहुत ही प्रसन्नित हो जाती है और भीम को कहती है कि मुझे और ऐसे जो पुष्प है वो चाहिए। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो भीम, तो वो ऐसे बद्रिकाश्रम में ऊपर पहाड़ों में जंगल में गए वो, जिस ओर से वो पुष्प आया था, और वो कितने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मदमत्त हो गए थे भीम से। तो सभी वृक्षों को तोड़ते हुए और बहुत सारे जो जंगल के जो पशु है उनको, जंगल के पशु है उनको डराते हुए ऐसे आगे बढ़ते गए। फिर वो रास्ते में वहाँ पर एक समय पे एक बहुत बड़ा बंदर बैठा था, तो फिर जनरली ऐसे होता है कोई लांग के नहीं जाते हैं। तो फिर बंदर को उन्होंने बहुत ही गुस्से से बोला, हे बंदर छोड़ दो मेरा रास्ता ऐसे। तो बंदर ने कहा कि मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, आप थोड़ा मुझे मेरे बाल या और क्या बोलते हैं उसको, नाक बाल
पूछ
पूछ को थोड़ा उठा के आप पार करके जाओ ऐसे बोलते हैं। तो फिर भीमसेन कोशिश करते हैं उठाने के लिए तो उठा नहीं पाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। फिर जो हनुमान, वो हनुमान जी थे बंदर, वो अपने रूप को, असली रूप को उन्होंने दर्शाया। तो क्योंकि भीम भी हनुमान जी वायु पुत्र है, वायु से जन्म लिया, तो उन्होंने दोनों भाई है वो। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जब आप कुरुक्षेत्र युद्ध आगे जाते, युद्ध में हुंकार करोगे, आपके साथ मैं भी, मेरा आवाज भी जोर दूंगा। उसके कारण उनका आवाज क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उसको सुन के ही लोगों का हृदयाघात हो जाएगा ऐसे। हाँ, तो ऐसे होता था। तो भीमसेन, और वो ये भी कहते हैं कि मैं आपके जो भाई है अर्जुन, उनके ध्वज के ऊपर उपस्थित रहूंगा ऐसे। तो इसके लिए दूसरा भी कथा है, जब अर्जुन रामेश्वर में गए, वहां पर कई सारे बंदर थे। अर्जुन उनको, एक बंदर को पूछते हैं कि क्योंकि अर्जुन हमेशा वो धनुर्बाण और धनुर्च जो यू नो तीर चलाना, धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थे, उसके लिए वो बहुत प्रभावित थे। तो इसलिए उन्होंने पूछा, आपके भगवान राम क्यों ये बाण चलाकर या तीर चलाकर उन्होंने ये क्या है ब्रिज नहीं बनाया, ये समुंदर के ऊपर सेतु नहीं बांधा उन्होंने। वो लोगों ने कहा कि वो बाण से नहीं क्या होगा, तो नहीं बना सकते उसको ऐसे। अर्जुन वो बोलता है क्योंकि उसको धनुर्विद्या में बहुत ही उसके लिए गर्व हो गया था कि मैं बना के दिखाता हूँ ऐसे बोलता। फिर वो बंदर बोलता है कि आप बना के दिखाएंगे तो मैं आपका हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊंगा। और अर्जुन बोलते हैं, वो नहीं, मैं नहीं बना सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, अभी आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर बहुत बार वो बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर उसको छोड़ देते हैं। तो फिर अंत में अर्जुन बहुत ही निरुत्साही होकर वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहां पर एक ब्राह्मण बालक आता है, तो वो कहते हैं कि कभी भी कुछ स्पर्धा होता है तो कोई बीच में क्या होना चाहिए, आर्बिटर क्या बोलते हैं उसको, कोई मध्यस्थ होना चाहिए, फिर से ये शुरू करेंगे ऐसे। इस बार अर्जुन जब वो मारते तीर मारते हैं तो वो ब्रिज को कोई क्या है उसको तोड़ नहीं सकते, वो बच जाता है। तो बार बार वो बंदर क्या करता है, उसको तोड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो तब समझ में आ जाता है बंदर को कि ये जो ब्राह्मण बालक थे वो मेरे भगवान राम है। वो बंदर कौन थे, वो हनुमान जी थे। तो फिर वो उनके शरण में जाते हैं। फिर अर्जुन को वो कृष्ण दिखाई दे रहे थे और हनुमान जी को वो बंदर मतलब राम दिखाया रहते हैं। तो दोनों को आशीर्वाद देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कभी भी स्पर्धा नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज बोलते हैं कि जैसे आपने, हनुमान ने अपने वादा किया था, इसलिए आपको इनका सेवक बनना चाहिए, इनके ध्वज में आपको उपस्थित रहना चाहिए ऐसा। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि कपिध्वज हनुमान जी थे और भगवान कृष्ण के रूप में राम भी है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ पर सौभाग्य के लक्ष्मी देवी सीता देवी भी रहेंगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सभी लक्षण के कारण पांडवों के लिए विजय निश्चित है ऐसे। और भी ये चिन्ह है, कपिध्वज भी एक चिन्ह है यहाँ पर, और ऋषिकेश शब्द भी आता है, ऋषिकेश श्लोक में भी आता है। तो ये सभी लक्षण पांडवों को विजय दिलाने वाले थे। तो और इस श्लोक में ऋषिकेश दूसरी बार आता है अभी इस अध्याय में, तो इस श्लोक में आता है ना। पहली बार कब आया था पता है? पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय कौंडम धर्मो महाशंखम भीम कर्म रुखोदरः। तो भगवान क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्जुन को वो मार्गदर्शक, अर्जुन के इंद्रियों को मार्गदर्शन करने वाले थे यहाँ पर। तो उस श्लोक में अब इस श्लोक में उसका महत्व एक ही है, एक ही दिया गया ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महामहि पते। तो फिर इदम तदा वाक्यम इदम महामहि पते, तो महीपते हे राजन, महीपते मतलब ये पूरा पृथ्वी का राजा है, तो स्वामी है। तो ऐसे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे ये वाक्य उन्होंने बताया। अब यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है अतः व्यवस्थित नहीं प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, वो युद्ध करने के लिए तैयार है, अभी चलाने वाले थे फिर बात करना शुरू कर देते। क्यों बात करना चाहिए अभी, क्यों अर्जुन को बात करना चाहिए अभी, तीर मारना क्या छोड़ के बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम लोगों का तीसरा विवाद ना अर्जुन को मोहग्रस्त होना यहाँ से आरंभ हो जाता है, उनको ब्रह्म में भगवान स्वयं उनको ब्रह्म में डाल रहे। वैसे तो अर्जुन तैयार थे तीर चलाने के लिए, प्रवृत्ति शस्त्र वो सभी तैयार हो गए थे, वो छोड़ने वाले थे अभी। तो फिर अभी वो वचन बोलने लगे, क्या हो गए यहाँ बीच में? तो भगवान अर्जुन को अभी ब्रह्म में डाल दिया। तो और ब्रह्म में डालने से क्या होता है, अर्जुन भ्रमित होके भौतिक आसक्ति को व्यक्त प्रकट करेंगे, मोह को प्रकट करेंगे, फिर भगवान उनको मोह से मुक्त करने के लिए भगवद गीता सुनाएंगे। वास्तव में हम लोगों का मोह और अज्ञान को अज्ञान से मुक्त करने के लिए भगवद गीता। वैसे तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद होने के कारण वो मोह और अज्ञान से मुक्त है, आगे और वर्णन आएगा उसके बारे में। तो ये भगवान के हमारे ऊपर कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद अगला ठीक है तो कोई पढ़ेंगे
प्रारंभ होने वाले होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञान होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की बाधा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण की युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण युद्धसन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सब परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, इससे विजय के लक्ष्य स्पष्ट थे।
श्लोक क्रमांक 21-22। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युता यावदेत निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यावदेता निरीक्षे हम, तो यावदेता निरीक्षे हम, तो मैं वो क्या अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनका देखना चाह उनको देखना चाहता हूँ। किन को? सो योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा से जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खैर मया सहयोगव्यम, जो दोनों खैर मया सहयोगव्यम, जिनके साथ इस युद्ध में संग्राम में मुझे युद्ध करना है वो देखना चाहता हूँ। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में स्थापित कीजिए। सेनयोर वयोर मध्ये रथम स्थापे मे अच्युता। तो यहाँ पर अच्युत शब्द क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान अच्युत है, वो कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते, उसको अच्युत उनको अच्युत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस अच्युत शब्द का महत्व समझा रहे हैं कि लिटरल मीनिंग उसका शब्दार्थ क्या है, अपने स्थिति के कभी वो च्युत नहीं होते, उसका वो शब्दार्थ है अच्युत शब्द का अर्थ। लेकिन यहाँ पर उसका क्या महत्व है, इस श्लोक में उसको उपयोग करने का क्या महत्व है, वो यहाँ पर आचार्य हमें या श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो अच्युत शब्द का अर्थ यहाँ पर इस श्लोक में है कि अच्युत शब्द का इस श्लोक में अर्थ है कि भगवान जो कभी भी अपने भक्तों को स्नेह दिखाने में क्या बोलते हैं, ही डज नॉट फेल टू शो हिज अफेक्शन, नहीं पीछे नहीं छुपते नहीं है, सो दैट इज, तो कभी भी छुपते नहीं है अपने भक्तों को स्नेह दिखाने के लिए, उनको इसीलिए उनको अच्युत करके संबोधित किया है। तो इसको उनको भक्त वत्सल कहा गया, इसलिए भगवान को भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह रहता, इसके कारण वो कभी छुपते नहीं है अपने भक्तों को स्नेह दिखाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो भक्त वत्सलता है, अलग इसके पहले के श्लोक में भी हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को महसूस होता है या तात्पर्य उनसे हम लोग समझते हैं कि कैसे भगवान अर्जुन का सारथी बन गए हैं। लेकिन विशेष करके इस श्लोक में ये अच्युत करके संबोधित करके अर्जुन भगवान की भक्त वत्सलता को समझा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि भगवान के 64 गुणों में एक गुण है भक्त सुहृत, भक्तों का हित चिंतक है भगवान और भक्तों के मित्र है। तो और उसका भी वो दो अर्थ बताते हैं कि भगवान भक्तों के हित चिंतक है या भक्तों के सुहृत है, मित्र है, इसके दो अर्थ बताते हैं। एक है कि उनको सेवा करना बहुत ही आसान है, ही इज इजीली सर्व्ड। और दूसरा है कि सो ही इज फ्रेंड ऑफ हिज सर्वेंट्स, भगवान अपने सेवकों का मित्र मित्र बन जाते हैं। तो उसको क्या, उसको इसका अर्थ क्या होता है, मित्र बन जाते हैं मतलब, तो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दो अर्थ होते हैं। तो भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, उनके सेवकों के। फिर रूप गोस्वामी जो पहले के लिए कि उनका सेवा करना बहुत ही आसान है, वो उनका सेवा करना बहुत ही आसान है, उसके लिए एक श्लोक उल्लेख करते हैं विष्णु धर्म से। वो श्लोक गौतमीय तंत्र में भी पाया जाता है, तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है वो। तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके न च विक्रीनते स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके न, भगवान को सेवा करना बहुत ही आसान है, क्या करना चाहिए सिर्फ आप तुलसी दल और गंगा जल, उनको कुछ थोड़ा सा जल उनको अर्पण करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो इतना करने से क्या होता है, विक्रीनते स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, उनकी भक्त वत्सलता के कारण, भक्तों के प्रति प्रेम के कारण, उनके स्नेह के कारण क्या करते हैं भगवान, तो अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीनते स्वामात्मानं, अपने आत्मा को पूरी तरह से अपने आप को वो बेच देते हैं। तो ये भगवान के भक्त वत्सलता है, भक्तों के प्रति प्रेम या स्नेह है। इस भक्त वत्सलता के कारण ही भगवान अच्युत कहते हैं, कहा गया उनको, कभी भी वो स्नेह दिखाने में तो वो चुकते नहीं है। तो और इनको उनका उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, इस इतना मात्र करने से ही तो वो अपने आप को बेच देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, आप कुछ ऐसे जल दीजिए, कुछ पते दीजिए और कुछ जल अर्पण कीजिए, वो संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति है? कभी कभी हम लोग लाइफ मेंबर बनाते हैं ना, और लाइफ मेंबर वो लोग इतना डिमांड करते हैं है ना, थोड़ा उन्होंने यू नो कुछ किया तो कुछ दान दिया, उसके लिए वो कितना सारा डिमांड करते हैं है ना, इतना मुश्किल है लाइफ मेंबर बनाना उनको। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, तो आपसे कुछ वो मांगते नहीं हैं, तो थोड़ा उनको ऐसे दे दिया तो अपने आप को वो बेच देते हैं। तो फिर इसके उदाहरण इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख किया गया था, पता है कहाँ पर उसको उल्लेख किया गया था, चैतन्य चरितामृत में, जब अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी का जगत में इतने सारे अधर्म फैल गया है, विशेष करके वो वहाँ पर नवद्वीप में देख रहे थे, सब लोग भ्रष्ट हो गया कोई भी, हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, सब इंद्र तृप्ति में डूबे हुए थे, कर्मकांड ज्ञानकांड और विशेष करके पढ़ुआ लोग जो शिक्षक वर्ग मिश्रा चक्रवर्ती वगैरह वो लोग भट्टाचार्य वगैरह वो लोग क्या कर रहे थे, तो वो वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे और सिखा रहे थे दूसरों को, जो विद्यार्थी अलग अलग पूरा देश पर कोने कोने से वहाँ पर विद्यार्थी आए थे अध्ययन करने के लिए, तो सब लोग लेकिन कोई भी भक्ति शास्त्र को अध्ययन नहीं करते थे, गीता भागवत को कोई अध्ययन नहीं करते, सब लोग भौतिक शास्त्रों का ही अध्ययन करते थे और हमेशा तर्क वितर्क और वाद विवाद में डूबे रहते थे। तो विद्यार्थी शिक्षक को हरा देता था वाद विवाद में, और वाद विवाद शिक्षक विद्यार्थी को हराता था, इसी में आनंद, एक ये सर्वोच्च आनंद है मनोधर्म का आनंद, मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं ना, मानसिक चिंतन या बुद्धि के स्तर पर इंद्र तृप्ति है। तो सब लोग पूरी तरह से अभक्त बन गए थे और पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए थे। इस स्थिति को देखकर कुछ ही वैष्णव थे वहाँ पर, कुछ ही अद्वैत आचार्य श्रीदास ठाकुर ऐसे कुछ वैष्णव थे, इसको देखकर अद्वैत आचार्य बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ भगवान इस जगत में प्रकट होना चाहिए, और वह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भगवान को यहाँ पर लेकर ही आऊँगा। तो उसके लिए उनके मन में ये श्लोक आ गया, तो ये गौतमीय तंत्र से, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुनके न वह विक्रयन ते स्वमात्मान भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। फिर उन्होंने गंगा का जल लिया, तुलसी का जल लिया और गंगा के तट पर भगवान को हर रोज वो सेवा पूजा किया, उन्होंने आराधना की। तो ऐसे करके भगवान को हुंकार करके बुलाया चैतन्य महाप्रभु को। इस धरातल प्रकट होने का एक कारण क्या है? अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया, उसके कारण वो प्रकट हो गए। इसीलिए हमें अद्वैत आचार्य को बहुत ही आभारी होना चाहिए कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में लेकर आए। तो मतलब वहाँ पर भी ऐसे वर्णन आता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है। चैतन्य महाप्रभु कितना प्रसन्न हो गए सिर्फ ये अद्वैत आचार्य के भक्ति भावना से, ऐसे तुलसी जल और गंगा जल अर्पण करने से। तो ये भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, और उसके प्रसन्न करने के नतीजा क्या हो जाता है, फल क्या हो जाता है, भगवान अपने आप को वो बेच देते हैं उस भक्त को। ये उनकी भक्त वत्सलता है, भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। तो यहाँ पर भी अर्जुन का वो सारथी बन गए हैं। और दूसरा वो उनके सुभक्त के जो मित्र है, मित्र की जो वेलविशर या उनके हितचिंतक है, तो उसके लिए दूसरा जो है वो ही इज अ फ्रेंड ऑफ हिज सर्वेंट्स। उनके सेवकों का क्या है, वो मित्र है। उसके लिए रूप गोस्वामी प्रथम स्कंद से एक श्लोक उल्लेख करते हैं, वो वैष्णदेव का श्लोक है। वो शरशैया के ऊपर बैठ लेटे थे और भगवान वहाँ पर आए थे पांडवों के साथ, वो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे। तो प्रार्थना में एक वो प्रार्थना बोलते हैं, स्वानिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मृता मृतमादि कर्तुं मवाप्लतो स्वस्थ धृत धृतरथ चरणोप्यायाशलाधुदुम्। You see here, you know, Dugur, it comes, Dugur it should become, you know, and then it should start with Hari Riva. How you will speak this actually, recite this. So, मेरे इच्छा के को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरे ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो ये भीष्मदेव उस लीला का वो या स्मरण कर रहे जो युद्ध भूमि में हुआ था। तो भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कोई अस्त्र को उठाऊंगा नहीं, और भीष्म देव ने क्या प्रतिज्ञा लिया था, मैं भगवान को बाध्य करूंगा वो अस्त्र उठाने के लिए। ऐसे वो इतना घमासान युद्ध किया, उन्होंने अर्जुन को घायल कर दिया, भगवान कृष्ण के शरीर के ऊपर भी बहुत सारे तीर गए, उनके शरीर पे भी खून से ओतप्रोत हो गया। तो लेकिन जब वो अर्जुन वो हारने ही वाले थे, तो बहुत ही विकट स्थिति में थे, इसके कारण भगवान ने क्या किया, वो रथ के से कूद कर नीचे आके वहाँ पर जो पहिए को लेकर ऐसे यहाँ पर वो यू नो बहुत ही मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, वैसे वो विष्णुदेव के ओर बढ़ने लगे। तो ये क्यों कह रहे हैं यहां पर, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। एक्चुअली भगवान को यह सब करने का जरूरत नहीं था, लेकिन भगवान अपने भक्त को प्रतिज्ञा को वो बना के रखना चाहते थे। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपना प्रतिज्ञा के लिए तोड़ने के लिए भी तैयार है। ये उनका भक्तों के प्रति स्नेह है, वत्सलता है। तो ये भागवत के पहले स्कंद के 90 अध्याय के 37वां श्लोक, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये भक्त वत्सलता को दिखाता है। तात्पर्य भी पढ़ी है, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है उसका। तो ये दो श्लोक श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं या उल्लेख करते हैं। और हम लोग देखते हैं भगवद गीता में पूरा अलग अलग जगह पर भगवान के भक्त वत्सलता के बारे में वर्णन आता है। किसी को पता है विशेष करके कहाँ पर उनके भक्त वत्सलता को वर्णन किया गया है भगवद गीता में? वो बद्ध जीव को उद्धार करना, ठीक है, वो भक्त बनने के बाद ही वो भी है। विशेष करके यहाँ पर वर्णन आता है भक्त वत्सलता। वही विवाद, लेकिन आरंभ कहाँ से होता है, कौन से श्लोक से होता है वो उसके बाद में आता है ना आरंभ, मतलब अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो 22वां श्लोक है। तो वहां से आरंभ होके 34 श्लोक तक भगवान अपने भक्त वत्सलता को ही व्यक्त कर रहे। तो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, उनको सेवा करना आसान है। यहाँ पर भी हम लोगों ने चर्चा की है ना कि उनको सेवा करना कितना आसान है। यहाँ पर गौतमीय तंत्र से वहां पर भी वही चीज बता रहे, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, और मैं भक्तों को रक्षा करता हूँ, उनके पास जो नहीं है उसको लेकर आता हूँ, उनके पास जो है उसका रक्षा करता हूँ। तो और वो मेरे पूजा करके मेरे पास ही अंत में मेरे पास आते हैं देवी देवता, और लोग वो कहीं और जाते हैं उपास, देवी देवता के उपासक। तो समोहम सर्वभूतेषु, फिर भी मेरे भक्तों को मेरा विशेष स्नेह है, ऐसे वर्णन करते हैं। और भक्त उनका पतन भी हुआ है, बहुत ही वो दुष्कर्म में लगे हैं, बहुत ही नीच कर्म में लगे हुए हैं भक्त, फिर भी उनको क्या समझना चाहिए, साधु मानना चाहिए। अपिचेत तो शुद्राचारो भजते मां अनन्य बात साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह उनको। और जो भी साधु मानते हैं भक्तों को, तो वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाते हैं। साधु धर्म वो धर्मात्मा नहीं बन जाते है, साधु को जो मानते हैं वो धर्मात्मा बन जाता है, ऐसे हाँ भगवान बोलते हैं। तो ये उनकी, और उसके बाद में भी वो कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षय तथा, तो ये पिशु पापयों ने, ये सभी श्लोक क्या बता रहे हैं, उनकी भक्तों के प्रति जो स्नेह है उसको वर्णन कर रहे हैं। तो ये भक्त वत्सलता, इसलिए ये अच्युत शब्द को क्या कहा गया यहाँ पर, भक्त वत्सलता कहा गया। और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ये अच्युत शब्द को इसलिए उपयोग कर रहे थे, यहाँ पर तात्पर्य में नहीं अपने प्रवचन में बोलते श्रील प्रभुपाद कि अच्युत शब्द को इसलिए वो उल्लेख कर रहे थे, वो नाम लिया उन्होंने, क्योंकि हालांकि आपका कभी अपने स्थिति से च्युत नहीं होते हैं, आप हमेशा भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने ही स्वीकार किया था मेरे सारथी बनने के लिए, तो मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप अच्युत है, ऐसे वो अर्जुन कह रहे हैं। समझ में आ गया कैसे? और दूसरा अर्थ बताते प्रभुपाद कि भगवान पुरुष है, और अर्जुन प्रकृति है, भगवान क्या है, हमेशा ये जो प्रकृति है भगवान से भोग्य है, तो भगवान प्रभु है, स्वामी है, इसलिए वो उनका स्थिति से कभी वो अच्युत नहीं होते, इसलिए उनका नाम है अच्युत, ऐसे कहते हैं। तो और प्रभुपाद कहते हैं हम लोगों को भी अच्युत बनना चाहिए, अभी हम लोग विच्युत है, अभी हम लोग क्या हो गए, पतन हो गया हम लोगों का अपनी स्थिति से, भगवान के भक्ति के जो स्तर है उससे पतन हो गया है, हम लोगों को भी अच्युत होना चाहिए, कभी पतन नहीं होना चाहिए हमारा भी। तो और क्योंकि भगवान के भारत में है ना, वो वैदिक संस्कृति में बहुत सारे गोत्र हुआ करते थे, गोत्र का अर्थ है अलग अलग ऋषि मुनियों के परिवार से हम लोगों ने जन्म लिया है, तो उसका जो संबंध वो ऋषि मुनि से वो लीनिएज कहते हैं ना परंपरा, उसको जोड़ा जाता है, पहचाना जाता है, इसलिए अलग अलग लोगों को गोत्र, अलग अलग जो विधि वैदिक विधि चलते रहते उस समय पर गोत्र पूजा जाता है। तो आपका गोत्र क्या है, आपको पता नहीं है तो बोल दीजिए अच्युत गोत्र करके, क्योंकि हम लोग भगवान के परंपरा में आ रहे हैं, भगवान के परिवार में आ रहे हैं। अच्छा डार्विन के अनुसार पाश्चात्य देश में सभी बंदर के गोत्र से हैं। कपि गोत्र तो ऐसे। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यावदेता निरीक्षे हम, पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा अर्जुन बात करना शुरू कर दिए, और इस श्लोक में वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं अर्जुन को, भगवान को, कि मेरे रथ को सेना के बीच में लेकर जाइए, मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन युद्ध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए है युद्ध करने की इच्छा से, और किनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो अस्मिन रण समुद्र में, तो इस संघर्ष में या शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, अस्मिन रण समुद्र में, तो ऐसे वो अर्जुन कह रहे अभी क्षत्रियों को दूसरे सेना को देखने का, उनका जो शक्ति को माफ करने का, किनके साथ युद्ध करना चाहिए, वो सब समझने में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं होता है, जब शंख बजाया अभी तीर चलाने के लिए तैयार हो गए हैं, फिर अभी देखना चाहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के यहाँ पर लीला शक्ति कार्य कर रहा है, कैसे अर्जुन को ब्रह्म में डाल दिया जा रहा है, तो ये सब चीज। और इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने देखा, बीसवें श्लोक में अतः व्यवस्थितां दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देख चुका है उन्होंने, फिर से और क्या देखना चाहते हैं, है ना, ये सब चीज हमें समझ में आता है कि अर्जुन क्या है। तो अभी उनके उनके जो मन का दिशा है बदल गया है, अभी तो किसी और की ओर जा रहा है, युद्ध करने को छोड़कर, अपने धर्म को पालन करने को छोड़कर कहीं और उनका मन जा रहा है। तो पढ़िए तात्पर्य, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे, ललित कृष्ण प्रभु।
यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अनेकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे।
इसके पहले भी आप देखिए, पहले के तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, युद्ध आरंभ होने ही वाला था, ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए युद्ध आरंभ होने वाला था, होने होते समय क्यों ये सब देखना, बात को करना, ये सब चीज क्यों चाहिए, ठीक है। हाँ पढ़िए वो, तो पहले श्रील प्रभुपाद पहले पूरा पैराग्राफ में वो अच्युत शब्द का महत्व को वर्णन करते हैं।
साथी रूप में मुझे अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने गौ का साथी पर स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है।
तो हम चर्चा कर रहे थे ना, वो भक्त सुहृत भगवान का एक गुण है, भक्त सुहृत। उसमें दो विभाग है, पहला है कि वो अपनी भक्त वत्सलता के कारण उनको सेवा करना आसान है, वो जो भी सेवा करते हैं वो अपने स्नेह के कारण, भक्त वत्सलता के कारण अपने आप को वो भेज देते हैं। और दूसरा चीज है वो अपने सेवकों का मित्र बन जाते हैं या उनका सेवक बन जाते हैं। यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा, इसलिए आप देखें सुखदेव गोस्वामी भी पंचम स्कंद के छठे अध्याय के कौन सा श्लोक है वो, छठे अध्याय के आठवें श्लोक, तो वहाँ पर वो कहते हैं क्या नहीं किया उन्होंने, आठवें या अठारहवें श्लोक 18th verse, तो उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए, क्या नहीं किया, वो परीक्षित महाराज को बोल रहे भगवान कृष्ण ने आपके लिए क्या नहीं किया। उन्होंने आपका वो पालन करने वाले थे पति, आपके और यादवों के पालन करने वाले थे, तो और आपके गुरु थे वो मार्गदर्शन कर मार्गदर्शक थे, तो और आपके लिए वो दूत बन गए, सेवक बन गए, क्या नहीं किया ना, रथ का सारथी बन गए, तो क्या नहीं किया उन्होंने, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अपने आप को आप लोगों पांडवों के लिए बेच दिया उन्होंने, ऐसे वो कहते हैं वहां पर सुखदेव गोस्वामी। तो प्रभुपाद वहां पर तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान कृष्ण या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रोत्साहित कर रहे थे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए या सुनने के लिए। ऐसा ना परीक्षित महाराज ऐसा ना सोचे कि, क्योंकि वहां पर बहुत सारे चीजों का वर्णन कर रहे थे, कैसे भगवान अलग अलग राजवंशों में प्रकट हुए, वृषभदेव के वंश में वो प्रकट हुए वृषभदेव के रूप में, और मतलब प्रियव्रत महाराज के वंश में वृषभदेव के रूप में प्रकट हुए वो, और रघुवंश ने रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, कृतु महाराज के रूप में वो उत्तान पाद के वंश में प्रकट हुए, तो ऐसे अलग अलग वंशों में भगवान का अवतार हुआ प्रकट हुआ। तो और यदु उस समय पर यदु वंश और ये पांडवों का भी वंश दोनों साथ में थे, और यदु वंश में भगवान प्रकट हुए थे, तो ऐसा परीक्षित महाराज को न लगे कि कि भगवान हमारे वंश में नहीं प्रकट हुए। तो इसके कारण परीक्षित महाराज ने ये श्लोक बताया कि आपके लिए क्या नहीं किया पांडवों के लिए, वो अपने आप को ही बेच दिया आपको, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं अर्जुन का सारथी बन गए वो, हालांकि वो अच्युत पढ़िए उसको।
और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अज्ञाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे, क्योंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की इतनी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके पटधर्मिता पर उदास होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं होता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक लेते हैं।
और अगला श्लोक, योच्यमानान वेक्षेहं यये तेत्र समागतः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। तो फिर और आगे बता रहे, पिछले श्लोक में हम लोग, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, मुझे उन लोगों को देखना देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो पिछले श्लोक में वो बता रहे थे कौन लोग युद्ध करने के लिए या युद्ध की इच्छा से आए हैं। कोई कोई ऐसे नहीं आते हैं कि ना किसी को प्रसन्न करना चाहिए, किसी को हार मुझे क्या है, मुझे जरूरी नहीं कि सभी लोग दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने के लिए आए। जैसे हम कह रहे थे ना, उनको युद्ध का अवसर मिल गया तो काफी है, बहुत अच्छा, तो उनको अच्छा लगता है। इसलिए पिछले श्लोक में वो युद्ध कामान अवस्थित, युद्ध करने की इच्छा से जो उपस्थित हुए हैं, ऐसे उन्होंने बताया था। और इस श्लोक में वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी देखना चाहता हूँ जो लोग धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो मुझे उनको तो देखने के लिए दीजिए, ऐसे कहते हैं। सो योच्यमानान अवेक्षेहम, युद्ध करने वालों को यह क्षेत्र समागत धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्ध क्रिया चिकित्सव। ये दुर्बुद्धि शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो दुर्बुद्धि शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रभुपाद समझाते हैं जो दूसरों को, दूसरों का जो संपत्ति है उसको हड़पने का जो इच्छा है उसको दुर्बुद्धि कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो सुबुद्धि मतलब या संतुष्टता का क्या अर्थ होता है? ईशो कृष्ण निषद में वर्णन हुआ है ना, ईशावाशमिदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता मा वृद कस्य स्विद्धनम। तो वहां पर सब कुछ भगवान विष्णु को या भगवान का है, ईश्वर भगवान का है, परमेश्वर का है। जो आपको अपने कर्म के अनुसार, जो आपके लिए उनकी व्यवस्था से दी गई है उसको ही स्वीकार करना चाहिए, दूसरों का कुछ हमें स्वीकार लेना नहीं चाहिए। तो लेकिन दूसरों का हड़पने का जो इच्छा होता है उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। अभी दुर्योधन को ये राज्य का जरूरत आज नहीं आने वाला था, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको हड़पने के लिए कोशिश कर रहा है आरंभ से, इसको दुर्बुद्धि कहते हैं, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। और उसका दुर्बुद्धि का सीमा क्या है? उसका सीमा ही नहीं है, वो लड़ने के लिए पूरा परिवार को, या आगे भी वर्णन आएगा पर पहले भी प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा पृथ्वी भर के सभी राजा हैं उनके परिवार, प्रभुपाद वो 18वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं ना, अभिमन्यु को लेकर भीष्म देव तक सभी परिवार वाले क्या है, वो मर के जाने वाले। ये दुर्बुद्धि का अंतिम सीमा है। तो ऐसे यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि ये दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आए हैं, मैं उनको देखना था चाहता हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों को भी अपनाना चाहिए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं ना, ब्राह्मण मतलब या ब्राह्मण या जो पंडित होता है, जो विद्वान पंडित होता है, उसका बुद्धि कैसे होता है, उसका चेतना कैसे होता है? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोत्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। तो पंडित का परिभाषा वो देते हैं, सभी स्त्रियों को अपने पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को क्या करना चाहिए, माता करके देखना चाहिए, और दूसरों का जो संपत्ति है उसको रास्ते के ऊपर पड़े हुए या दाना कूड़ा दाना कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो ऐसे उसको देखना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत बड़ा कॉस्टली मोबाइल है, चमक दमक वाला मोबाइल है, मुझे भी चाहिए करके, या उसका ही उड़ा ले करके, ऐसा नहीं। इसको ये पंडित का लक्षण नहीं है। पंडित आत्मवत सर्वभूतेश्वर, और अभी सभी अपने समान सबको देखता है, उसको तकलीफ जब होता है वैसे ही चीज वो चाहता है कि दूसरों को भी तकलीफ ना हो, तो इसको पंडित कहते हैं। जैसा कि इधर उधर कुछ पड़ा है जरूरी नहीं हम उसको उठा ले, तो उसको उठाना नहीं चाहिए, वो पंडित का लक्षण नहीं है। किसी का वस्तु है उसको उसको पूछे बिना या उसको कहे बिना उठा लेना, ऐसा होता है ना आश्रम में, किसी का वस्तु पड़ा रहता है उसको उठा लेते हैं और वो बेचारा ढूंढता रहता है कहाँ पर है क्या है करके, उसको पता भी नहीं रहता। ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने बहुत अपने आप को नियंत्रण करना चाहिए, तो ये पंडित का लक्षण है, नहीं तो वो दुर्बुद्धि है ना, दुर्योधन जैसा मेंटालिटी है। ठीक है पढ़िए तात्पर्य। तो यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने के दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। वो क्यों करना चाहिए अभी, और वो दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाके ये सब करना चाहिए? वो पहले दुर्योधन भी हम लोगों ने देखा ना इस अध्याय के आरंभ में, उसने भी सेना का जो अनुमान वो भी लगाया उसने, लेकिन ऐसे तो नहीं किया उसने अर्जुन जैसे। क्यों कर रहे हैं ये सब चीज, क्यों कर रहे हैं? हाँ तो भगवान उनको ब्रह्म में डाल रहे हैं, तो वो ब्रह्म में जा रहे हैं अभी। एक्चुअली मोहग्रस्त नहीं, मोहग्रस्त होना भ्रमित होना वो ठीक रहेगा। अनुवादक तो भ्रमित होना ठीक है, तो उसको भ्रमित होना मोहग्रस्त से भी भ्रमित होना अच्छा है ना, ठीक वही है ठीक है, लेकिन पहले भ्रमित हो रहे फिर मोहग्रस्त हो जाते, भ्रमित होकर मोहग्रस्त हो जाते, अभी भ्रम में डाल रहे भगवान कृष्ण। और सो अगला श्लोक, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन, द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को भरतवंशी कह रहे, ये शब्द है, ये जो नाम है अर्जुन को भी बार बार बाद में आएगा, तो भगवान उनको ऐसे संबोधित करेंगे। और यहाँ पर स्थापयित्वा रथोत्तम, अर्जुन द्वारा उस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके भगवान कृष्ण खड़ा कर दिए। तो रथोत्तम वो भी शब्द उपयोग कर रहे। 14वें श्लोक में संजय ने उस रथ को कैसे संबोधित किया गया था, कैसे वर्णन किया था उन्होंने, विशाल रथ, महति महान रथ, महति संदने स्थितो तथा श्वेत रहते महति संदने स्थितो। फिर से उस रथ का यहाँ पर वो गुणगान कर रहे हैं। रथोत्तम उत्तम रथ को क्या किया उन्होंने, ये दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए। और इसका भी महत्व है कि दोनों, मैं कह रहा था दोनों सेनाओं के बीच में क्यों लेके जाना चाहिए, पिछले श्लोक में हम कह रहे थे ना कि जब दुर्योधन ये सेना का शक्ति का अनुमान कर रहे थे तब वो सेना के बीच में नहीं आए, वो अपने रथ लेकर। फिर अर्जुन कृष्ण को सेना के बीच, रथ के बीच में क्यों लेकर आए उन्होंने? तो नहीं, अर्जुन ने पहले वो 21वां श्लोक में बोलते हैं ना, सेना योर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता कहते हैं। और इस श्लोक में संजय कह रहे हैं कि भगवान उसकी रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया उन्होंने। क्यों कर रहे हैं ये सब? उनको तो वहां खड़े होके भी अनुमान लगा सकते थे, जैसे आप दुर्योधन ने किया, दुर्योधन ने किया ना उसको। और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी ऐसे आता है, सेनयोर उभयोर मध्ये विशिदंतम इदम वचः। भगवान ऋषिकेश ने क्या किया, दोनों सेनाओं के बीच में जो शोक करते हुए अर्जुन को ये वचन बोल दिए। फिर वहां से भगवद गीता आरंभ हो जाता है 11वें श्लोक से। तो 21वां श्लोक में सेनयोर उभयोर मध्ये आता है, और ये 24वें श्लोक में सेनयोर उभयोर मध्ये आता है। फिर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में सेनयोर उभयोर मध्ये आता है। क्या संबंध है इसका, क्या आप अनुमान कर सकते हैं? या उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे श्लोक के 10वें अध्याय में के तात्पर्य में, दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में वो वर्णन करते हैं कि भगवान इन भगवदगीता के जो उनके जो वचन या भगवदगीता उन्होंने सेनयोर उभयोर मध्य विसिदंतम वचन दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने बताया। तो क्यों बताया? क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों सेनाओं के योद्धा, इसको जो उपस्थित लोग थे वो भगवदगीता सुने। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना भगवदगीता सबके लिए है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। हालांकि अंत में वही लोग समझेंगे जो जिनके पास वो योग्यता है, जो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, न तपस्काय भक्ताय शुश्रूषवे अभ्यसूयन्ते, जो उनको वो अभक्त है, उन्होंने भगवान, जो भक्तों का भगवान का सेवा नहीं किया है, सिर्फ अपने आप को भक्त करके प्रदर्शन कर रहा है लेकिन सेवा नहीं करता है, तो और भगवान के प्रति क्या करता है, ईर्ष्या कर, ईर्ष्यालु व्यक्ति है और कोई तपस्या नहीं है उसके जीवन में, ऐसे व्यक्ति को भगवद्गीता नहीं सुनाना चाहिए, या वो उसको समझ में नहीं आएगा सुनाएंगे तब। हालांकि अंत में सब भगवद्गीता सबके लिए, लेकिन वो ऐसे लोग, ये चार वर्ग के लोग कभी इसको समझेंगे नहीं। तो इससे ये भी पता चल जाता है भगवान जानबूझकर अर्जुन को ऐसे बोलने के लिए बताया कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर जाने के लिए, और रथ के वो भगवान लेकर आए, जैसे इस श्लोक के, इस श्लोक में वर्णन आता है, और दूसरे अध्याय के श्लोक के वहां पर जैसे वर्णन आता है उन्होंने भगवद्गीता सुना है। देखिए भगवान की कृपा है तो हमें समझ में आ जाता, सबको वो भगवद्गीता का ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ऐसे भ्रमित करके उनको ये बोलने के लिए बाध्य किया कि दोनों सेनाओं के बीच में आप अपने हमारे रथ को लेकर जाइए। तो इस श्लोक में वो रथ को लेकर आए हैं अभी। तो और ऋषिकेश और गुड़ाकेश, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ऋषिकेश तीसरी बार, इस अध्याय में तीसरी बार आया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अर्थ तो, महत्व तो, अर्थ तो वही है, थोड़ा बहुत अलग, जो अर्जुन के मन को जानते थे। तो पिछले दो बार जब प्रभुपाद इसको ऋषिकेश का शब्द को वर्णन किया उन्होंने, तब उन्होंने बताया कि इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहा गया। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जो अर्जुन को, मन को जानते थे। तो अभी अर्जुन क्या करने वाले हैं, अर्जुन को क्या होगा अभी, ये तो वो सब जानते थे वो, इसलिए उनको ऋषिकेश करके संजय ने ऋषिकेश शब्द को उपयोग किया है, जो अर्जुन के मन को जानने वाले थे। तो वैसे तो आप इसको सभी इंद्रियों का स्वामी है, वो मन को भी जानने वाला है, क्योंकि मन भी एक इंद्रिया है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति, छह इंद्रियों में जो मन प्रमुख है तो वो भी सिक्स्थ सेंस बोलते हैं लोग, लेकिन वो सिक्स्थ सेंस अलग है। सो ये छठा इंद्रिया है, इंद्रिया है मन भी, तो उसको जानने वाले थे वो। तो और गुणाधीश शब्द का भी महत्व है, जो गुण का मतलब अज्ञान है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं अपने प्रवचन में कि ये भौतिक जगत अंधकार है और अज्ञान नहीं है। तो हम सब लोग अज्ञान में हैं, लेकिन अर्जुन भगवान के साथ होने के कारण, हमेशा भगवान के साथ होने के कारण इस अज्ञान और अंधकार से मुक्त थे। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ना, कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। तो जहां पर कृष्ण है, कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और माया क्या है, वो अंधकार के समान। जहां पर कृष्ण रहते हैं वहां पर माया का प्रभाव नहीं रहता। तो इसलिए अर्जुन के अंदर अज्ञान और अंधकार नहीं हो सकता है, तो इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया है। और गुड़ाकेश मतलब गुड़ का शब्द का अज्ञान, प्रभुपाद कहते हैं वो नींद को भी अज्ञान कहा गया है, वो भी अज्ञान का लक्षण है नींद। तो ज्यादा नींद करते हैं मतलब वो तमोगुण में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। तो भगवान को स्मरण करने से क्या होता है, ऐसे अज्ञान और नींद से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं, भक्त का अर्थ क्या है, वो भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, वही भक्त का परिभाषा है। कैसे हम लोग भक्त को जान सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी डिफाइन डिवोटी, डिवोटी जो भगवान को हमेशा जो स्मरण करते हैं उनको भक्त कहते हैं। खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, हमेशा वो भगवान को स्मरण करते हैं। इसके कारण, ऐसे स्मरण के कारण वो भक्त क्या है, अज्ञान और अंधकार से या नींद से मुक्त हो जाता है। तो ये भक्त का परिभाषा है। तो इसको इसीलिए अर्जुन कहते हैं गुड़ाकेश। तो इसका भी अर्थ है, महाभारत में भी वर्णन आता है कि एक बार अर्जुन वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, शाम का संध्या का समय था, मतलब संध्या मतलब अभी वो रात का समय था। उनका जो क्या है दीप जो है वो बुझ जाते हैं हवा के कारण, तो और वैसे ही वो खाना शुरू कर देते हैं। तब उनके मन में आ जाता है, मैं ऐसे अंधेरे में भी खा सकता हूँ, तो अंधेरे में क्यों मैं युद्ध कला को अभ्यास नहीं कर सकता, धनुर्विद्या को अभ्यास नहीं करता। इसलिए वो रात को अंधेरे में भी वो युद्ध जो धनुर्विद्या को अभ्यास करना शुरू कर दिया। रात को सोना बंद, वो सोते नहीं थे रात को, दिन रात अभ्यास करते थे। तो इसलिए उनका नाम है गुड़ाकेश वो भी। लेकिन असली कारण क्या है, वो कैसे क्यों कर पाए उसको, क्योंकि भगवान को स्मरण करने के कारण, जैसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये सब चीज महत्वपूर्ण है। पढ़िए
श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ का अर्थ है नींद और नींद को जीत लेता है, यह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव भी ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना व्रत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे। वैद्यों सेनाओं के बंधे में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार।
तो अगला श्लोक, भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां समवेतां कुरुमिति। भीष्म द्रोण तथा क्या है, विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान और क्या कर दिए, वो सिर्फ दोनों सेनाओं के बीच में रथ को नहीं लेकर आए, उस रथ को भीष्म और द्रोण के सामने लेकर आए। क्यों लेकर आए वो, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन को इनके प्रति विशेष स्नेह है, द्रोण और भीष्म के प्रति। तो पांडव न होने के कारण जो सभी पांडव थे भीष्म देव के गोदी में बड़े हो गए थे, वो उनके गोद में बड़े हो गए थे, वो तो इसलिए उनके प्रति बहुत ही स्नेह था। और वैसे तो अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य है, तो इसलिए उनके प्रति, उनके गुरु है वो धनुर्विद्या में, तो इसके कारण उनका स्नेह था। तो ये सब चीज भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब चीज अर्जुन को भ्रम डालने के लिए भगवान के ये सभी तरीकाएं भगवान उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग ना, हम लोग जानते हैं ना पहले से, तो कई सारे चीज भगवान उपयोग कर रहे हैं। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां, जो विश्व भर के अन्य समस्त राजाएं, सर्वेषां च महीक्षितां, मही मतलब विश्व, पूरा पृथ्वी भर, इसका अर्थ है कि जैसे प्रभुपाद 18वें अध्याय के श्लोक में इसके तात्पर्य में कह रहे थे, ऐसा लगता है कि दुनिया से सारे राजाओं ने यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, उसका प्रमाण इस श्लोक में है। देखिए, सर्वेषां च महीक्षितां, जो विश्व के सभी राजाएं, सर्व मतलब सभी राजाएं यहाँ पर उपस्थित है, ये इसको महायुद्ध कहते हैं, सभी राजाएं इकट्ठा हुए थे और सभी लोग वापस नहीं गए, तो सभी का नाश हो गया इसमें। तो क्योंकि वो सब लोग, बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हुए थे, ऐसे दुर्बुद्धि पापी दुर्योधन का साथ दिया था। वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुमिति, भगवान वो बोलते है प्रताप के पुत्र को कि आप देखो यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरियों को देखो, ऐसे कह रहे। विशेष करके वो क्या बोल रहे, देखो आपके भीष्म और द्रोण भी है यहाँ पर। तो और पार्थ शब्द वो भी महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं, क्योंकि वो प्रताप के पुत्र थे इसलिए वो उनका सारथी बन गए थे भगवान। पढ़िए तात्पर्य,
समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु ने जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पाप शब्द अर्थात या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए उपयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है, के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन प्रताप का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका अभिप्राय था कि अर्जुन वहीं पर उठकर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ प्रताप के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहास स्पष्ट की है।
तो ये 21वां श्लोक से लेकर 25वां श्लोक तक उसका सारा अंश भीष्मदेव, अभी हमने कुछ समय पहले भीष्मदेव का एक प्रार्थना हम लोगों ने चर्चा किया, तो एक और उनके प्रार्थना में वो उसको सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, ये पिछले श्लोक में उल्लेख किया था, वो 90वें अध्याय पहले स्कंद के 90वें अध्याय का 37वां श्लोक था, ये 35वां श्लोक है, उसके दो श्लोकों के पहले, उसमें वो सार रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो कहते हैं, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो भलयो रथं निवेश्य, स्थितवती पर सैनिक रतवती पार्थ सके रतेर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और यहाँ स्थित होकर उन्होंने अपने कृपापूर्ण चित वचन से विरोधी पक्ष की या चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। मतलब अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए सपदि सखी बचो निशम्य मध्य सपदि सखी बचो। अपने जो मित्र है उसका अर्थ है सखी। सखी मतलब यहाँ पर मित्र। अर्जुन के वचन से वो दोनों सेनाओं के बीच में वो प्रवेश करे। अभी निशम्य मध्य निज परयोर भल भलयोर रतम निवेश निवेश। तो दोनों सेनाओं के बीच में प्रवेश करके अपने रथ को उन्होंने स्थापित किया। स्थितवती पुरसैनिक आयुरक्षणा। तो हतवती पार्थ सके रतिर ममस्तु। तो वो कहते हैं कि अपने दृष्टिपात करके वो परसैनिक आयुरक्षणा वो दूसरे सेना के जो आयु है उसको कम कर दिया दृष्टिपात करके। तो और ऐसे वो ऑलमोस्ट वो अभी खत्म हो गए सिर्फ भगवान का दृष्टिपात करने से। बाद में जाके अर्जुन को बोलेंगे ना कि मैं आप उनको हत्या करने वाला ही हूँ या हत्या उनका हो गया है सिर्फ आपको एक निमित्त बनना है ऐसे कहते। तो यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं ऐसे पार्थ सती के प्रति मेरा रति जागृत हो जाए आकर्षण जागृत हो जाए ऐसे कह रहे हैं। वो भी चाहे भीष्मदेव भी ये पार्थ सारथी को स्मरण कर रहे हैं पार्थ सारथी को स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। देखिए उसको भगवद गीता पहले अध्याय के 21वें श्लोक से 25वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के युग के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं के निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा हे रहे भीष्म हे रहे द्रोण इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी का आज्ञापालक है न संदेहवाहक चाहे वह जो भी हो लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश को पालन तक एक तत्पर दास की तरह करते हुए अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालकों का आदेश के आदेश पूरा करने से प्रसन्न होता है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है ना। लिख लिया आप लोगों ने पहले अध्याय के 9वें श्लोक पहले स्कंद के 9वें श्लोक के 35वां श्लोक। तो पूरा श्लोक और तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सार है 21वां श्लोक से लेकर 25वां श्लोक तक। अपने भक्त के आदेश को पालन करते हुए या अनन्य तो पूरा होता है या तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य में शुद्ध दिव्य प्रेम हो और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सके कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपने कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों के आयु क्षीण कर दी। हम लोग चर्चा कर रहे कि आप देखिए क्या क्या भगवान करते हैं। तो अभी हम लोग पिछले श्लोक में यह चर्चा कर रहे थे, क्यों सेने और उभय और मध्य वो रथ को स्थापित करने का क्या, उसके पीछे क्या महत्व था, हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका अर्थ क्या था। भगवान उनको क्या भगवद गीता प्रदान करने वाले थे सबको। और यहाँ पर दूसरा अर्थ विष्णुदेव कह रहे, वो बीच में जाकर क्या कर रहे थे, भगवान उनके ऊपर दृष्टिपात करके उनको आयु को नष्ट करने वाले थे। तो ये दूसरा कारण, भगवान एक ही साथ कितने सारे कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान ने अपने कृपा को रचितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में के युद्ध भूमि में सम्मिलित सारी योद्धाओं का मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय में उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। तो सिर्फ उनके आयु को नहीं कम किया उन्होंने, उनके जो कर्म है उससे वो उनको उद्धार कर दिया, जो भौतिक कर्म थे इन सभी योद्धाओं का उसको कर दिया, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। हम उसको बता रहे थे ना। तो ये भगवान कभी ऐसा भी वर्णन आ जाता है कि आधा भगवान ने क्या किया, अपने दृष्टिपात करके उनके कर्म नष्ट कर दिए, और आधा भगवान के तीर के द्वारा वो शुद्ध हो गए, ऐसे ऐसे भी वर्णन आता है। समझ में आ गया। क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था, अतः अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने के का अर्थ यह नहीं होता है कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे, वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपाल होते, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। देखिए भगवान क्या करते हैं, उनको लोग निंदा करते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं ऐसे हिंसा को प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ये भगवान, ऐसे लोग उनको कोसते हैं, लेकिन भगवान क्या है उनको मोक्ष दे रहे हैं, उनको उद्धार कर रहे हैं इस भौतिक जगत से। यहाँ पर वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपाल होते, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ ना हुआ होता। यहाँ उन्होंने मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के अवसर मिला था, अतएव भगवान सर्व मंगलमय है, और वे जो कुछ करते हैं वे सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे ही भगवान के दिव्य कार्यकलाप और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। पता है कौन सा श्लोक है, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सर्वों के लिए मंगलमय है। बहुत अच्छा है ना तात्पर्य। तो ये सभी पांच श्लोकों के तात्पर्य। तो फिर तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तत्र पश्चास्थितां पार्था पश्यन् पितृन्नता पितामह आचार्यं मातुलं भ्रात्रां पुत्रां पौत्रां सखीं सता श्वशुरां सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो ये सभी लोगों को, भीष्म द्रोण और जो पृथ्वी भर के जो राजाओं को देखा, और उनमें से कौन कौन थे वो लोग ये सभी सगे संबंधी वहां पर उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये हरेक वर्ग के लिए एक एक उदाहरण देते हैं, तात्पर्य में हर एक वर्ग के लिए एक एक उदाहरण देते हैं, उसका भी आप याद ना एक टेबल बनाइए, तो एक होमवर्क ले लीजिए। ये किनके लिए कौन कौन से उदाहरण है? पितृ माता पितामह, पितृ के लिए क्या उदाहरण है, पितामह के लिए क्या उदाहरण है, ऐसे सब आप उसका एक टेबल बनाइए, ठीक है? हम लोग देखेंगे आपका क्या है होमवर्क, क्या क्या किया है। हर एक के लिए उदाहरण देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में संजय वर्णन कर रहे सेनयोर उभयोरोपी, लेकिन दोनों ओर से उन्होंने देखा, ये सभी लोग दोनों ओर उपस्थित थे। प्रभुपाद इस तात्पर्य में वे विपक्ष में जो ये सभी सगे संबंधी है उनका उदाहरण देते हैं, लेकिन ये उदाहरण इस पक्ष में भी हम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही बता रहा है ना सेनयोर उभयोर बनते हैं, सेनयोर उभयोर अपनी दोनों सेनाओं के सेनाओं में ये सभी सगे संबंधी उपस्थित थे, ठीक है? तो श्लोक क्रमांक और कुछ है इसके बारे में बोलने का? ओके, श्लोक क्रमांक 27। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। एनि गिव मी दैट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ भक्ति सिद्धांत बाइबल। Someone can take this. तो इसका अनुवाद है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो ये हमारा अगला विभाग इस श्लोक से आरंभ हो रहा है। अर्जुन अपने कृपायाविष्ट हो गए, बहुत ही स्नेह के प्रभाव में आ गए। अभी ये सभी लोगों को देखा उन्होंने पिछले श्लोक में जिनके बारे में वर्णन हुआ है, उनको देखकर ऐसे वो लोग ओके वी कैन स्टॉप देन बेटर। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे श्लोक को। तो कोई प्रश्न है, 5 मिनट हम लोग कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, फिर श्लोक पाठ करेंगे। अर्जुन के तीर से, भगवान के दृष्टिपात से आधा और शुद्ध हो गए, दूसरा आधा कार्य वो अर्जुन को दिया उन्होंने। और कुछ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो यू कैन टेक श्लोक मेमोराइजेशन। अभी हम लोग श्लोक पाठ करेंगे, आज आपको लंबा बैठना पड़ेगा। हरे कृष्ण।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपधारी नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि।